मोक्षमार्गसेनेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पांच अणुव्रतों का वर्णन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने किया है अणुव्रतो गारी इस सूत्र की व्याख्या में। उन्होंने कहा कि त्रस प्राणियों के व्यपरोपण से निवृत्त अगारी होता है तो वो उसका प्रथम अणुव्रत कहलाता है, त्रस हिंसा का त्यागी होता है। फिर स्नेह और मोह आदि के वश से घर के विनाश में, गांव के विनाश में कारणभूत जो असत्य वचन है उसका त्याग कर देता है तो उसका वह दूसरा अणुव्रत होता है। यानी आचार्य पूज्यपाद स्वामी सत्य के विषय में एक ही बात करते हैं कि जिन वचनों से हिंसा होती है वो असत्य है। फिर अन्य को पीड़ा पहुंचाने वाले जो राजा है उसके डर से कोई वस्तु छोड़नी पड़ती है, ना चाहते हुए भी छोड़नी पड़ती है, लेकिन वो वस्तु किसी को दी हुई नहीं होती है। ऐसी छोड़ी हुई वस्तु को अणुव्रति ग्रहण नहीं करता तो ये उसका अचौर्य अणुव्रत होता है। फिर विवाहित और अविवाहित परस्त्री के संग से जिसकी प्रीति निवृत्त है अर्थात जो प्रीति रहित है ऐसा गृहस्थ चौथे अणुव्रत का धारी होता है। धन धान्य क्षेत्र आदि जो 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं उनको इच्छावश अर्थात अपने अभिप्राय पूर्वक सीमित कर लेता है, ये परिग्रह परिमाण अणुव्रत हो जाता है। इस तरह ये 5 व्रत हो गए और इन 5 अणुव्रतों को धारण करने वाला अगारी गृहस्थ श्रावक होता है। फिर शंकाकार ने यह प्रश्न किया कि क्या 5 अणुव्रत ही होते हैं श्रावक के, तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत भी होते हैं और इन 7 के अतिरिक्त भी कुछ होता है। तो पहले दिग्व्रत, फिर देशव्रत, फिर अनर्थ दंड विरति व्रत, तीनों के साथ विरति लगाना है। अब यहां पर आपको रत्नकरण में जो क्रम है उसमें और इसमें थोड़ा अंतर मिलेगा, कोई बात नहीं। दिग विरति दिशाओं में एक विराम लगा देना वो जीवन भर के लिए होता। फिर देश विरति यानी उस विराम में भी कुछ काल तक और सीमा बांध लेना, सीमन्यंतर सीमा, सीमा में भी और अंतर सीमा कर लेना। फिर अनर्थ दंड विरति व्रत में 5 प्रकार के अनर्थ दंडों का त्याग होता है, सामायिक में एक रूप होकर के धर्म ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्रोषित उपवास में पर्व के समय उपवास किया जाता है और आरंभ और इंद्रिय विषयों का त्याग किया जाता है। उपभोग परिभोग परिमाण में जो सेवनीय विषय है जो दूषित नहीं है उनमें भी परिमाण किया जाता है और दूषित का तो हमेशा के लिए त्याग किया जाता है। तो दूषित विषय कौन से हैं, तो उसके विषय में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे तरह से बतलाया था कि मधु, मांस और मद्य, ये तीन मकार जो त्रस घात के त्यागी हैं, उनको त्यागने योग्य है। फिर केतकी और अर्जुन वृक्ष के जो पुष्प अधिक होते हैं, और जो अदरक और मूली वगैरह होते हैं, जो बहुत जंतुओं के योनि स्थान है, अर्थात जिसमें निगोदिया जीवों का वास है, इसलिए अनंत काय व्यपदेश आरहाणी, वो अनंत काय इस संज्ञा के योग्य है, अर्थात इन्हीं का नाम अनंत काय है। ये बहुघात अल्प फलत्वात परिहर्तव्यानि, अधिक घात होने से और अल्प फल यानी थोड़ा स्वाद आने से छोड़ने योग्य है। फिर यान, वाहन, आभरण आदिशु एतावत एव इष्टम, और जो भी मेरे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उसमें से मेरे लिए इतने ही इष्ट हैं, अन्य अनिष्टम बाकी अनिष्ट हैं, तो ऐसे अनिष्ट से भी दूर हो जाना भोगोपभोग परिमाण में उपकारी होता है। फिर काल नियम ही नहीं, यावत जीवन वा यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो वैसे कर सकते हैं त्याग, काल का नियम बनाकर या फिर जीवन भर के लिए। फिर अतिथि संविभाग में कहा कि संयम का नाश न करते हुए जो भ्रमण करते हैं, जो तिथि रहित होते हैं और जिनका आना अनियत काल होता है, वो अतिथि है। ऐसे अतिथि के लिए जो संविभाग किया जाता है, यानी अपने वैभव का जो उनके योग्य दान करने योग्य हिस्सा है वो उनको दान में दिया जाता है। सचतुर्विध, चार प्रकार का दान होता है, भिक्षा दान, उपकरण दान, औषध दान और प्रतिश्रय यानी आवास दान। तो मोक्ष के लिए जो तत्पर है ऐसे अतिथि के लिए, जो कि संयम में परायण है और जो शुद्ध हैं, उनके लिए शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देने योग्य हैं। धर्म के उपकरण भी सम्यक दर्शन आदि की वृद्धि के लिए उन अतिथियों को देने योग्य हैं। योग्य औषध भी उनको देने योग्य हैं। और ठहरने का स्थान परम धर्म की श्रद्धा पूर्वक उनको प्रदान करने योग्य है। अब प्रश्न आता है कि सूत्र में च शब्द क्यों है। दिग्देशान अर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, ये जो अंत में च है ये क्यों है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, च शब्दो वक्ष्यमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ। च शब्द आगामी सूत्र में कहे जाने वाले गृहस्थ के आचरण का समुच्चय करने के लिए, उसको भी इसमें मिलाने के लिए च शब्द है। अर्थात पांच अणुव्रत हो गए, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत हो गए, और फिर अब एक और भी आपको जोड़ना है गृहस्थ धर्म में, एक व्रत और जोड़ लेना। कह पुनरसो, वो क्या है जिसको इसमें जोड़ना चाह रहे हो। तो आचार्य कहते हैं वो धर्म क्या है, मारणांतिकीन संलेखनां जोषिता, जुष प्रीति सेवने, सेविता का प्रयोग नहीं किया, जोषिता का प्रयोग किया, ये लुट लकार का प्रयोग होता है, भविता ऐसा रूप बनता है भू धातु में, और लिट में भविष्यति बनता है, इसमें भविता बनता है। व्याकरण में पढ़ा होगा दस लकार होते हैं, उसमें एक ये भी आता है जोशिता, भविता, जनिता ऐसे रूप बनते। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, मरण रूप अंत के आने पर तो मरणांत शब्द से ठक प्रत्यय किया, इकण प्रत्यय किया तो मारणांतिक बना, पर चूंकि सल्लेखना स्त्रीलिंग था तो फिर गीप करके मारणांतिकी स्त्रीलिंग शब्द बना दिया। तो मरण रूप अंत के आने पर सल्लेखना की प्रक्रिया होती है, वो भी गृहस्थ का धर्म है, तो गृहस्थ जोशिता इसका अर्थ होता है प्रीति पूर्वक उस सल्लेखना का सेवन करें, अर्थात सल्लेखना को अंगीकार करें, बड़े प्रेम से अंगीकार करें। देखिए अभी जो समाचार आया है वहां से यरनाल से, आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री के संग में नमित सागर महाराज श्री नाम के एक बहुत ही तपस्वी साधु हैं, वयोवृद्ध भी हैं और क्षीण काय हैं, उनकी संलेखना चल रही है। तो वो कहते हैं कि वो संघ के एक रत्न हैं, और परिषद आदि को बहुत सहन किया हुआ है उन्होंने, महान तपस्वी कह सकते हैं उनको, बिल्कुल दुबले पतले हैं, उनकी संलेखना चल रही है। तो यहां आचार्य कहते हैं कि गृहस्थ का भी ये धार्मिक कर्तव्य है कि जब मरण रूप अंत निकट हो तो फिर वो प्रीति पूर्वक संलेखना करे। स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इंद्रियाणां बलानांच कारणवशात् संक्षयो मरणम्। मरण की सटीक परिभाषा दी आचार्य महाराज ने कि अपने परिणामों से स्वीकार की हुई आयु का संक्षय, अर्थात पूर्णतः क्षय हो जाना मरण है। और साथ में और किन किन का क्षय होगा आयु के साथ, तो इंद्रियाणाम इंद्रियों का भी क्षय होगा, बलानाम च मनोबल वचन बल काय बल इनका भी क्षय होगा, और च शब्द से अन्य प्राणों का भी क्षय होगा, और कारण वशात किसी न किसी कारण के प्रभाव से ये घटना होती है। अकारण तो मरण नहीं होता, कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो ये पहले से अपने अंदर एक तैयारी, एक मनोदशा अपने अंदर बना के रखना है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी जब समय को निकट जाना तो जीवन के प्रति और अपने संबंधों के प्रति वो तटस्थ हुए, और अल्पकाल में उन्होंने अपना काम कर लिया। हम दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहते हैं, और दोनों बहुत बड़े विद्वान थे, लोग चर्चा करते हैं कि पंडित लोग कभी दीक्षा नहीं लेते, पंडित लोग कभी दीक्षा नहीं लेते, ठीक है उसका जो भी कारण हो, पर पंडित देवकीनंदन शास्त्री और पंडित गोपाल दास बरैया जी, पंडित गोपाल दास बरैया जी वो विद्वान है जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी है और जिनके पास नल्लिकार के जो अनंत कीर्ति मुनि महाराज थे ना, वो मोरेना गए थे जैन शास्त्रों को पढ़ने के लिए। संयोग ऐसा बना कि दोनों की आयु जब पूर्ण हो रही थी तब उन्होंने जिस पलंग पर वो बैठते थे उसको छोड़ दिया और अपने विद्यार्थी से कहा कि एक चटाई नीचे बिछा दो। वो बोलता है कि गुरुजी किसके लिए? बोले मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो जैसे ही चटाई बिछाई उन्होंने, गुरुजी नीचे उतरे, चटाई पर बैठे और उन्होंने बोला कि मेरा समय पूरा होता है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ, और वस्त्रों का त्याग करके कायोत्सर करके चले गए। ये उन चंद मिनटों की घटना नहीं है, इसकी तैयारी करने में पूरा जमाना गुजर जाता है। कहते हैं कि जीवन की जो पीड़ा है उसकी अनुभूति वास्तविक है, पीड़ा की जो अनुभूति होती है ना वो वास्तविक है, लेकिन पीड़ा वास्तविक नहीं है। ये बहुत बड़ा जीवन का रहस्य है। तो ऐसे वयोवृद्ध लोग और बड़े ज्ञानी जन जीवन के रहस्य वेत्ता हुए हैं, इतना ज्ञान होने के बाद, और उनकी पत्नियां, पंडित गोपाल दास बरैया जी की पत्नी के नाम से तो उनके सारे विद्यार्थी परिचित हैं। वो डांटती थी पंडित जी को और पंडित जी का सम्मान बड़े बड़े जैन विद्वान और जैनेतर विद्वान करते थे। अब क्या है कि पंडित जी का जो ज्ञान था उसका मूल्यांकन करने वाले सम्मान करते थे, लेकिन पंडित जी का जो व्यावहारिक जीवन था उसमें जो भी संबंध था उनका घर से वो अलग प्रकार का था। तो पत्नी उनको डांटती भी थी, पर तो भी जब उनसे पूछा गया कि कितने अशुभ कर्म का उदय है पंडित जी आपके कि आपको ऐसी पत्नी मिली है कि जो आपको चैन से नहीं रहने देती, आपने कितना लेखन किया, सुशीला उपन्यास लिखा आपने, जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी आपने, बहुत काम किया आपने, लेकिन एक कमी रह गई जीवन में। पंडित जी उत्तर देते हैं कि जैसा आप समझ रहे हो उस दृष्टि से मैं नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम क्लेश पूर्ण होता है, हितकारी नहीं होता है। अगर मुझे सब अनुकूलता मिल जाए तो फिर शास्त्र के इन वचनों का मुझे विस्मरण हो जाए। मैं सौभाग्य मानता हूं कि मेरी पत्नी ऐसा बर्ताव करती है और मुझे प्रतिदिन याद दिलाती है कि गृहस्थ आश्रम हेय है। और क्या कमाल की बात है कि उन्होंने मतलब क्षण मात्र में वो काम कर लिया जिसके लिए कई जन्म लग जाते हैं। इसी तरह पंडित देवकी नंदन शास्त्री जी की भी स्थिति थी। उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी थी उनकी, पहले तो राजा लोग विद्वानों की रक्षा करते थे, और फिर अब समाज के जो प्रधान लोग हैं, श्रेष्ठी वर्ग हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वो विद्वानों का संरक्षण करें, पर जब नहीं करते तो फिर विद्वान जो है वो फिर मजबूर होकर जहां जाते हैं वहां पर फिर कोई राशि निर्धारित करके जाते हैं, क्योंकि उनका भी कुटुंब है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो कैसे करें। तो पहले राजा लोग ये काम करते थे, विद्वानों का संरक्षण निश्चित करते थे, और आज भी इस जानकारी को जो प्राप्त कर रहे हैं वो इस पर विचार कर सकते हैं। तो संलेखना 12 वर्ष की भी हो सकती है, अंतर्मुहूर्त की भी हो सकती है। फिर जब अंतिम संस्कार की बारी आई पंडित देवकीनंदन जी की, उनने भी सब छोड़ दिया था और नीचे चटाई पर आ गए थे। ये इतना तो उनको पता था कि ये जो गद्दे पलंग और सुविधा के साधन हैं ये अंत में काम नहीं आते, अंत में परिग्रह का त्याग करना होता ही है। तो वो छोड़ करके नीचे चटाई पर बैठ करके बस, और नमोकार मंत्र ही शरण, ये सबको पता है, तो बस चले गए। अब आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अभी पैसे नहीं थे, तो फिर उनके विद्यार्थी को अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ी थी। ये कितनी करुण स्थिति है, ऐसी स्थिति हुई थी, लेकिन ठीक है, वो जो काम करके गए बड़ा अद्भुत काम था। और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब अनंत कीर्ति महाराज सन 1918 में उनके पास पढ़ने गए तो उनके पास कुछ होगा, तो ये क्यों जाते यहां से दक्षिण से वहां तक, मुरैना तक क्यों जाते। तो ये मरण है, अंतग्रहणम तद्भव मरण प्रतिपत्यर्थम। अंत शब्द जो है सूत्र में वो उस भाव संबंधी मरण को लेकर के है, आत्मा का कोई अंत नहीं है, इतना ध्यान रखना। जीवन का अंत जीव का अंत नहीं है, मरणम अंत मरणांत, मरण रूप अंत जो होता है उसको मरणांत कहते हैं। सब प्रयोजनमस्येति मरणांतिकी, वो इस संलेखना का प्रयोजन होता है कि जब अंतिम समय निकट आ गया तो फिर संलेखना के साथ एकदम हल्के होकर के जाना है। यहां से निकलते समय भार के साथ नहीं निकलना, भार के साथ निकलते हैं तो फिर भार जीव को गिराता है, भार के साथ नहीं जाना। शिखर जी की चढ़ाई करते समय पता चलता है कि जो अपन 4-6 नारियल लेकर जो लोग चढ़ते हैं उनको पता चलता है कि 4-6 नारियल कितने भारी होते हैं। सम्यक काय कषाय संलेखना संलेखना, भली भांति शरीर और कषायों को कृश करना संलेखना है। कायस्य बाह्यस्य आभ्यंतराणांच कषायाणां तत्कारण हापन क्रमेण सम्यक लेखना संलेखना। शरीर जो है वो बाह्य है, अर्थात आत्मा से पृथक है, स्वरूप की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा तो अभी एक क्षेत्र का एक क्षेत्र में है, और अभ्यंतर में कषाय है जो आत्मा के अंदर है। इन दोनों के कारणों को छोड़ना है। शरीर का कारण क्या है? आहार, पानी आदि। और कषाय का कारण क्या है? कषाय के अनेक आलंबन हो सकते हैं, इष्ट और अनिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, और इष्ट और अनिष्ट संबंध भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इनसे अपने आप को दूर हटाना है, क्षमा मांग करके सब इष्टजनों को छोड़ना है और सम्यक प्रकार से कम करते 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 अलग हो जाना है। आर्य का विशुद्ध मति माता जी ने अपने 12 वर्ष की संलेखना के एक एक पेज जो लिखे हैं, माने उनने ये लिखा है कि आम को जब मैंने अंतिम बार लिया और छोड़ा तब कैसी अनुभूति हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए छोड़ने पर अलग अनुभूति होती है और हमेशा के लिए छोड़ने पर अलग अनुभूति होती है, और वो भी ऐसी वस्तु छोड़ रहे हैं जो साधु के लिए ग्राह्य है, त्याज्य नहीं है, उसको छोड़ रहे हैं संलेखना में। तो वो जो अनुभूति वो सब लिखा है उन्होंने, माता जी ने 12 वर्षों की संलेखना का वो अनमोल खजाना है। कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को वैसी साधना करनी हो तो उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो एक बात तो ख्याल में रखना है कि पीड़ा की अनुभूति यथार्थ है, पर पीड़ा जो है वो भ्रम है। पर तो भी व्यवहारने से, ये तो क्या है कि अपन अगर तत्व दृष्टि से देखते हैं तो ये बात आती है, व्यवहारने से देखा जाए तो फिर पीड़ा के जितने साधन हैं वो पीड़ाजनक ही कहलाते हैं। अगर प्रीतिपूर्वक संलेखना नहीं करेंगे तो संलेखना बलात् संभव नहीं है, कराई नहीं जा सकती संलेखना, की जाती है न बलात् कार्यते अपितु प्रीत्या क्रियते, प्रीतिपूर्वक की जाती है संलेखना। सत्याम ही प्रीतौ स्वयमेव करोति, प्रीति होने पर स्वयं ही कर लेते हैं। अब देखिए कुछ शंका समाधान है। स्यान मतम, ऐसा ख्याल हो सकता है किसी का, आत्मवध प्राप्नोति स्वाभिसंधि पूर्वक आयुरादि निवृत्ते है, अपने अभिप्राय पूर्वक आयु आदि से निवृत्ति करने पर, ये तो आत्महत्या होगी संलेखना। आचार्य कहते हैं नैष दोष, ये दोष नहीं आएगा संलेखना में, क्यों, अप्रमत तत्वात्, क्योंकि अप्रमत्त है संलेखना धारण करने वाले गृहस्थ, प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसे इत्युक्तम, पहले बतला चुके हैं कि प्रमत्त योग से प्राणों का व्यपरोपण हिंसा है, ऐसा कहा जा चुका है। न चास्य प्रमाद योगोस्ति, संलेखनाधारी के पास प्रमाद योग नहीं है, कुतः, क्यों नहीं है, रागाद्य भावात, रागादिक का अभाव है, रागद्वेष मोहाविष्टस्य ही विशेषस्त्राद्युपकरण प्रयोगवशाद् आत्मानं घ्नतः, राग द्वेष और मोह के आवेश वाला जो व्यक्ति होता है वह जब विष शस्त्र आदि उपकरणों के प्रयोग के प्रभाव से अपना घात करता है तब आत्महत्या होती है। न संलेखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति, संलेखना को स्वीकार करने वाले के रागादिक नहीं है, ततो नात्मवद दोष, इसलिए आत्महत्या का दोष नहीं है। बोले कि मरण किसी व्रति को इष्ट नहीं है, मरण से अनिष्टत्वात्, आचार्य कह रहे हैं कि मरण इष्ट नहीं है, मरने के लिए संलेखना नहीं कर रहे हैं, मरण सामने है इसलिए संलेखना कर रहे हैं। यथा, जैसे उदाहरण देते हैं, वणि जो विविध पण्य दानादान संचय परस्य, कोई व्यापारी अपना माल देता है, माल लेता भी है, तो उसका संग्रह करता है अपने गोदाम में, तो उसको स्वगृह विनाशो निष्ठ, उसको अपनी गोदाम का नाश इष्ट नहीं है, भूकंप में नष्ट हो जाए, बाढ़ आ जाए या फिर आग लग जाए, ये स्थितियां उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तद विनाश कारणे च कुतश्चित उपस्थित है, मान लो कोई ऐसा कारण उपस्थित हो पड़े, आग लग जाए मान लो, तब क्या करे? तो आचार्य कहते हैं यथा शक्ति च परिहरति, जितनी शक्ति है, शक्ति लगा करके उसकी रक्षा करता है, जो अपना माल है उसकी रक्षा करता है। दो परिहारे च, लेकिन जब कोई उपाय नहीं हो पाता तो पण्य विनाशो यथा न भवति तथा यतते, तो फिर जो मूल धन है, जो मूल वस्तु है, आग तो लग गई, मतलब उस गोदाम में आग लग गई, तो जो सामान है उसको बचा लेता है। पहले तो गोदाम को बचाने की कोशिश करता है, फिर सामान को बचा लेता है। तथा यतते, वैसा यत्न करता है। एवं गृहस्थो भी, इसी तरह गृहस्थ भी व्रतशील पण्य संचय प्रवर्तमान, व्रत और शील रूपी माल को संग्रहित करने में प्रवृत्त है। तदाश्रयस्य न पातम अभिवांछति, और व्रतशीलों का आधार जो ये औदारिक शरीर मनुष्य का, उसका नाश पसंद नहीं करता कोई भी व्रती। तद उपप्लव कारणी चोपस्थिते, लेकिन उस शरीर के विनाश का कारण उपस्थित हो जाने पर क्या करता है? स्वगुणा विरोधीन परिहरति, अपने व्रत और गुणों का नाश न हो, उसमें विरोध न पड़े, इस तरह से उसका परिहार करता, औषध लेता, उपचार कराता है। दो परिहारे च, लेकिन जब सब उपाय निष्फल हो जाते हैं तो यथा स्वगुण विनाशो न भवति तथा प्रयतते इति कथम आत्मवधो भवेत, तो जिस तरह से अपने गुणों का नाश न हो उस तरह से वो प्रवृत्ति करता है, और धीरे धीरे सब आहार कषाय वगैरह राग द्वेष सब छोड़ करके अंत में निराहार उपवास को प्राप्त होकर नमोकार मंत्र की शरण को स्वीकार करके चला जाता है। तो इति, इसलिए कथम आत्मवधो भवेत, तुम ही बताओ ये आत्मवध कैसे हो सकता है, आत्महत्या कैसे हो सकती, सल लेखना नहीं हो सकती। इसके बाद अतिचारों का वर्णन करके इस अध्याय को पूर्ण किया जाएगा। जैनम जयतु शासनम।